أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. إلهي، تاريخ اپنے آغاز سے جو سفر ظہور کی طرف طے کر رہی ہے، الہی تاریخ کا ہر مرحلہ انسان کے لیے خاص قسم کے اتار چڑھاؤ رکھتا ہے، اور اس الہی تاریخ کے اصلی معمار اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء الہی ہیں، انسان کی تاریخ کے زمین پر آغاز کے ساتھ، کہ ہر نبی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک الہی ہدایت کا نقشہ اور ایک روڈ میپ لے کر اپنے زمانے میں موجود انسانوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس دعوت کے اندر فقط زبان استعمال نہیں ہوتی بلکہ خود وہ نبی یا خلیفہ الہی خود الہی تعلیمات کا مجسم نمونہ قرار پاتا ہے، اور اپنے ارد گرد میں جن انسانوں کی تربیت کا اہتمام کرتا ہے ان کے لیے خود ایک اسوہ عمل جو ہے قرار پاتا ہے. جیسا کہ عرض ہوا، مختلف انبیاء علیہ السلام کے زمانوں کے اعتبار سے بالخصوص اولی العزم انبیاء ہمارا اس وقت موضوع گفتگو ہے. اسلامی الہی تہذیب اور تمدن کو سمجھنے کے حوالے سے، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ تاریخ انسانوں کے لیے بصیرت، درس اور عبرت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تاریخ درس اس پہلو سے ہے کہ تاریخ کے اندر جن الہی سنتوں کی پیروی کی گئی اور ان کے نتیجے میں جو انسانوں کو مثبت اثرات دیکھنے میں ملے، مثبت نتائج دیکھنے میں ملے، الہی برکات کا نزول ان پہ ہوا، اور انسانی فردی سعادت، انسان کی سماجی جو سعادت ہے اور انسانوں کا جو رشد ہے، جو اس کے ذریعے سے ہوا، تاریخ کا یہ جو پہلو ہے درس لینے کا، اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں. یعنی مثبت چیزیں جو تاریخ کے اندر ہمارے لیے چراغ راہ ہیں، ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو تاریخ کا جو ہے عبرت کا پہلو ہے. یعنی جہاں جہاں الہی سنتوں سے سرکشی اختیار کی گئی، الہی قوانین سے سرپیچی کی گئی، اور ان کے نتیجے میں جو انسانوں کو، قوموں کو، معاشروں کو جو سزائیں بھگتنی پڑی، جن عذابوں کا شکار ہونا پڑا، ان کی نسبت تاریخ ہمیں عبرت لینے کی طرف لاتی ہے کہ ان سے عبرت لو. قرآن مجید کے اندر جتنی بھی داستانیں قوموں کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اور جتنے بھی واقعات جو ہمیں ایک طرف ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی تاریخی کتاب ہے قرآن مجید کی تاریخ کو بیان کر رہی ہے، وہاں پر تاریخ ان دو دریچوں سے بیان ہو رہی ہے. یعنی یہ دو پہلو ہیں قرآن کے اندر جو ہمارے پاس واقعات ہیں ان کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ تاریخ انبیاء کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ معصومین علیہ السلام کے اندر. اسی طریقے سے آپ کہیں کہ مختلف خطوں کی جو تاریخ ہے، ان تمام چیزوں کے اندر جو پہلو پیش نظر ہے وہ درس اور عبرت کا پہلو ہے. کیونکہ درس اور عبرت، یہ دو اگر چیزیں انسان کے پاس تاریخ کے اعتبار سے موجود ہوں، تو ان دو کے نتیجے میں انسان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کا نام ہے بصیرت. یعنی انسان اگر تاریخ سے درس اور عبرت لے رہا ہو، تو اس کے نتیجے میں ایک آگاہی انسان کو نصیب ہوتی ہے، کہ جس آگاہی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان ایک خاص انداز میں، ایک نپے تلے انداز کے ساتھ آگے طرف بڑھے. اولی العزم انبیاء میں سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ جو اولی العزم انبیاء میں سے ایک اہم نبی ہیں، ان کی حیات مبارکہ کے اندر جو الہی تہذیب کے حوالے سے مرحلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کس مرحلے کی تعمیر کی، حضرت عیسیٰ کا جو زمانہ ہے اس کے شرائط اور حالات کیا ہیں، کن حالات سے سامنا ہے حضرت عیسیٰ کو، اور الہی خلیفہ ہونے کے ناطے محاذ حق کا نمائندہ ہونے کے ناطے حضرت عیسیٰ کے اقدامات کیا ہیں، اور کن چیزوں سے حضرت عیسیٰ کا پالا پڑتا ہے، یہاں پر قوم کی آزمائش کس کے ساتھ ہے، خواص کی آزمائش کس کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں آج کچھ نکات عرض کرنے ہیں. جیسا کہ خود موضوع جو بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے یہی درج کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ولائی معنویت کی توسیع. یہاں چند چیزیں ہیں. دیکھیں کون سی معنویت آج مطلوب ہے، یہ جو ہم اتنے درس سنتے ہیں اخلاقیات کے اوپر، اتنی تاکید کی جاتی ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کریں. مثلا فلاں جگہ پہ درس اخلاق ہو رہا ہے، ابھی یہ اخلاقیات کا کورس ہے، یا مثلا یہ انسان جو ہے یہ معلم اخلاق ہے، یہ انسان بہت با اخلاق ہے، یہ بڑی با اخلاق شخصیت ہے. یہ جو اس طرح کے آپ ہم خانوادہ کلمات اور ایسی اصطلاحات سنتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں جو معنویت اور اخلاق کی جو تصویر ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک تو نظر ثانی کی ضرورت ہے اس نگاہ کے اوپر کہ آیا واقعاً یہ وہی نگاہ ہے جو قرآن کو، جو دین کو مطلوب ہے. دین کے اندر جو تزکیہ نفس کی بات کی گئی ہے، انسان کے طہارت قلب کی بات کی گئی ہے، اخلاقیات کی بات کی گئی ہے، اخلاق کریمہ اپنانے کی بات کی گئی ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو چند ملتے جلتے ایسے کلمات ہیں کہ جب ہمارے ذہن میں کلمہ اخلاق آتا ہے تو اس کے اطراف میں یہ چیزیں آتی ہیں. مثلا جب آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک پہلو تقویٰ آتا ہے، جب آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں ایک پہلو آپ کے ذہن میں زہد آتا ہے، جب آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں ایک طرف آپ کے ذہن میں مثلا جو ہے احسن انداز میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ آتا ہے. یہ جو مختلف چیزیں ہیں، یہاں پہ جو بنیادی ترین چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بعنوان خلیفہ الہی، جس نے انسانوں کے لیے عبودیت کا جو راستہ ہے، نمبر ایک اس کو مکمل دکھانا ہے، اور نمبر دو اس راستے کو فقط دکھانا نہیں ہے بلکہ عبودیت کا سفر طے کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین نے ایک انسان کے انفرادی طور پر الہی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد یا اسی کے ساتھ دوسری جو اہم ذمہ داری انسان کے کندھے کے اوپر ہے وہ دو چیزیں ہیں. امیر المومنین اس کے حوالے سے جو اصطلاح خود نہج البلاغہ میں استعمال کی ہے، وہاں پہ فرماتے ہیں تناسح اور تعاون، یہ دو اصلی ذمہ داریاں ہیں معاشرتی اعتبار سے ہمارے اوپر. ہم میں سے ہر فرد چاہے وہ اپنی آئلی زندگی گزار رہا ہے، گھر کی زندگی، خاندان کی زندگی، ہمسائے کی زندگی، ہمسائیگی کی حالت، اسی طریقے سے کسی دفتر میں ہے، کسی جگہ کوئی اس کا کلیک ہے، کہیں پہ رومیٹ ہے، کچھ بھی آپ کہیں کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہے، ہم سب کی اجتماعی حوالے سے دو اہم ذمہ داری ہیں. ایک کا نام ہے تناصح یعنی نصیحت، یعنی دوسروں کو متوجہ کرنا کہ آپ کے کندھے کے اوپر کون سی ذمہ داری ہے، آپ جو ابھی زندگی گزار رہے ہو کس طرح کی زندگی جو ہے گزارنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تناسخ. امیر المومنین کی نہج البلاغہ میں جو اصطلاح ہے نصیحت کرنا، البتہ یہاں نصیحت ٹوکنا نہیں ہے، یہاں نصیحت دوسرے کو جسے کہتے ہیں خرابیوں کا مرکز قرار دینا نہیں ہے، یعنی ایک طرح کی ایسی دل سوزی کہ جس کے نتیجے میں اگلے فرد کے اندر ایک انگیزہ ایجاد ہو ایک رستے کی طرف آنے کا، نصیحت اس معنی میں ہے یہاں پر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اگلے فرد کو آپ یہ آگاہی دے دیں، اب اس آگاہی کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کریں. ظاہر سی بات ہے انسان جب خود بھی ایک چیز سے آگاہ ہوتا ہے تو آگاہ ہونے کے بعد جو عمل کا مرحلہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. اب دیکھیں ہمیں سے ہر بندہ اگر اپنے معلومات کا جو سٹور ہے ہمارے ذہن میں اگر اس کی طرف رجوع کرے تو ہمارے پاس کتنی طرح کی معلومات ہے، کتنی طرح کا علم ہے، ہمیں کئی چیزیں پتہ ہیں، لیکن جب مقام عمل آتا ہے تو مقام عمل کیونکہ ریزسٹنس کا میدان ہے، مقام عمل کے اندر تزاحمات ہیں، مقام عمل کے اندر آپس میں چیزوں کے درمیان جسے کہتے ہیں ایک پوری پیکار ہے، یہ مرحلہ انسان کے لیے سخت ہے عمل کا. یہاں پر تزکیہ نفس کیا ہے، یہاں پر اخلاق کیا ہے، خلقیات کیا ہیں؟ دیکھیں، اخلاق یا معنویت یا روحانیت، کوئی بھی اس کو آپ وہ نام جو زیادہ سمجھ میں آتا وہ رکھیں، در حقیقت انسان کے وجود میں ظرفیت کا ایجاد کرنا ہے. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق خالی جسے آپ کہتے ہیں کمرشل ایتھکس کا نام نہیں ہے اخلاقیات، جیسے ہوتا ہے نا. اور مثلا آج کل مارکیٹنگ کی دنیا میں ابھی جو ہمارا جدید بزنس سسٹم ہے، اس کے اندر باقاعدہ جو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں یا مختلف قسم کے جو سیٹ اپز ہوتے ہیں، تو اس کے اندر افراد کو پروپوگیشن کے لیے یا کسٹمر گھیرنے کے لیے جو ہے ایک خاص قسم کی اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں، جن کا انسان کے اندر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اپنے پروفیشن کے لیے یہ اخلاقیات ضروری ہیں، لہذا اس کو اپناتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ میں سے جن افراد نے جہاز پہ سفر کیا ہے، کسی بھی ملک کے اندر، پاکستان میں ہو یا کہیں پہ باہر ہوں گے، اس کے علاوہ جو مثال کے طور پہ مختلف قسم کے پروفیشنل ادارے ہوتے ہیں، کمرشل یا جو بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، آپ دیکھیں اس میں اگر آپ ایک کسٹمر کے عنوان سے اگر وہاں جائیں تو آپ اسے کتنے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جو ہے یہ جو مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہے، یہ واقعی ایک اوریجنل مسکراہٹ ہے، یا یہ جو اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، بڑے دھیمی آواز میں بات کر رہے ہیں، بڑے نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں، ہمارے تندی کا جواب بھی بڑے نرمی کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ کمرشل اخلاق ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کمرشل اخلاق، یعنی ایک ایسا اخلاق جو اس انسان کے وجود میں ایک ظرفیت ایجاد نہیں کر سکتا. یعنی ایسا اخلاق نہیں ہے کہ جو اخلاق اس انسان کی آگاہی کے نتیجے میں ایجاد ہوا ہے، کیونکہ تو اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک خاص نقشے کے تحت پیدا کیا ہے، تو ایک باہدف مخلوق ہے، لہذا باہدف انسان کے لیے بے ہدف کام زیب نہیں دیتے. مثال دے رہا ہوں، مثلا اگر آپ کو پتا ہے کہ بھائی میں نے یہاں سے فلاں جگہ پہنچنا ہے، تو ظاہر ہے ہر روٹ نہیں اپنا سکتے، آپ کو ایک خاص روٹ اپنانا پڑے گا، آپ کو کچھ نہ نوشتہ قوانین کی پیروی کرنی ہوگی. مثلا آپ نے کتنی سپیڈ رکھنی ہے، آپ نے کدھر مڑنا ہے، کدھر نہیں مڑنا، یہ ساری چیزیں جو انسان کے اندر اگر آپ دیکھی جائے، تو یہاں پر کیا ہے کہ عبودیت انسان کے لیے، انسان کے اللہ کے عبد بننے کے لیے جس پوٹینشیل کی انسان میں ضرورت ہے کہ جو اس کی آگاہی کو عمل میں تبدیل ہونے دے، ظاہر ریزسٹنس کا میدان ہے، تزاحمات ہیں مختلف، ان تزاحمات کے اندر، ان رکاوٹوں کے اندر انسان کو پھر بھی جو ہے اسی آگاہی کے مطابق حرکت دینے والی چیز کا نام انسان کے اندر معنویت ہے. اخلاقیات یہ ہیں، نہ بس ایک طرف وہ جو کمرشل اخلاق ہے، بزنس والا اخلاق، کہ جس میں آپ خوش اخلاق ہیں، آپ دھیمے انداز میں بات کر رہے ہیں، آپ اگلے کو تحمل کر رہے ہیں، آپ اپنے جسے کہتے ہیں اعصاب کا پارا ہائی نہیں ہونے دے رہے، آپ کا نروس سسٹم بالکل ایک نارمل حالت کے اندر ہے، باوجود اس کے کسی نے آپ کے ساتھ تندی اور سخت لہجے میں بات کی ہو. اس اخلاق کو دین کے اندر اگر یہ انسان کے وجود کے اندر ایک راسخ حقیقت کے طور پہ نہ بن چکا ہو، اس اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم اس کا نام رکھیں گے کمرشل اخلاق، بزنس والا اخلاق، جس کو آپ کہتے ہیں کمرشل ایتھکس، ایک طرح کا آپ کہہ دیں کہ ایسی اخلاقیات کہ جو کمرشل ہے، جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے، اس کا کوئی انسان کے شخصیت سے تعلق نہیں ہے. انبیاء جو کام کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے انبیاء کی جن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء کا کام کیا ہے، دیکھیں ایک مرحلہ ہے انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی مخلوق ہے جو آگاہی کے نتیجے میں اگر سفر کرے تو اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، وگرنہ جاہلانہ عبادتیں، جاہلانہ اعمال کی کوئی حیثیت دین کے اندر نہیں ہے. بے شک انسان انجام دے، معرفت کا نتیجہ جو انسان کا عمل ہے اس کی اہمیت ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے حوالے سے، جیسا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فلسفہ بعثت کے بارے میں فرمایا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کس لیے؟ لیثیر لہم دفائن العقول، کہ انسان کی عقل کو بھڑکائیں. کیا مطلب؟ یعنی انسان کی عقل کے اندر جو ظرفیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کہ انسان کی عقل جو ہے वो इस कायनात के हकायक को दर्क कर सकती है। और इसमें सबसे बड़ी हकीकत इस कायनात की ज़ाते इलाही की शनाख्त और मार्फत है। बस एक तरफ अंबिया ये काम करते हैं, इस काम के लिए अंबिया जो एक अहम वसीला अपनाते हैं उसको कुरान ने कहा है युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तालीम देते हैं। किताब यहाँ पे क्या है? देखें, किताब से मुराद यहाँ पे एक, जैसे कहते हैं, लिखी हुई हालत में एक ऐसी फकत चीज नहीं है कि जिसे आप कहें कि खाली जो है अरबी सिखा देते हैं या इबरी जबान सिखा देते हैं। मसलन जो अंबिया बनी इसराइल में आए हैं तो उनकी जबानें जो थी मुख्तलिफ, फकत वो अपने जमाने में सिखाते हैं, नहीं। किताब यहाँ पर, किताब से मुराद दर हकीकत नक्शे इलाही की तालीम है यहाँ। वगरना खाली मसलन आज अगर हम अपने इस्लाम की बात करें तो खाली कुरान की अगर तालीम से मुराद कुरान पढ़ना सिखा देना है, हिफ्ज करना इंसान को आ जाए, तर्जमा आ जाए, अगर इतना हो तो मेरे ख्याल में आज आप देखें जो दाइश है, आज आप देख लें जितने भी इस्लाम के अंदर टेररिस्ट ग्रो हैं, उनकी किरात कितनी अच्छी है, तिलावत कितनी अच्छी है। यही लोग देखें इधर गले काट रहे हैं और उधर खड़े होके जो है वो मिसाल के तौर पे तरावी के लिए जो है एक एक पूरा पारा पढ़ते हैं, खड़े होके बातें भी कर रहे हैं, सारा कुछ भी चल रहा है। इधर सूद और रिबा खा रहे हैं और उधर जो है वो कुरान की तिलावतें भी चल रही है। बस खाली किताब की तालीम से मुराद खाली जिसे कहते हैं जिल्द के एक, जैसे कहते हैं जिल्द के दो हिस्सों के दरमियान एक जखामत पर मौजूद कोई लिखी हुई चीज नहीं है। फकत इंसान इसी लिखी हुई चीज को ऐसे अंदाज में तिलावत देना, तालीम देना कि इंसान के लिए हिदायत का नक्शा वाजे हो, यह है तालीम किताब। और इंसानों की जरफियतों के मुताबिक देखते हैं कि अब किस इंसान में कौन सी जरफियत ईजाद हो चुकी है, उसके मुताबिक उसकी रहनुमाई करते हैं। और इसी के साथ एक अहम काम जो है, जाहिर है इस आगाही को सिर्फ आगाही नहीं रहना, मफाहिम नहीं है ये, आगाही अब इंसान के वजूद का हिस्सा बने, ये मारिफत अब इंसान के मकाम अक्ल से मकाम कल्ब की तरफ आए, क्योंकि कल्ब इंसान का बुनियादी इंजन है। कल्ब वो जगह है जहां से इंसान अब इरादे की बुनियाद पर जो अपने अज़ाओ जवारे को अमल में लाना है उसमें एक अहम चीज का नाम कल्ब है। अगर ये इंजन स्टार्ट ना हो इंसान के इस मशीन के अंदर तो इस आगाही का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा अंबिया की यहाँ दो अहम बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, एक तरफ इंसानों की अक्ल को मबूस करना है कि जो किताब की तालीम देकर होती है, और दूसरी तरफ इंसानों के अंदर उस जरफियत को ईजाद करना है। देखें अगर कोई आज के जमाने में दीन का पूछे कि भाई दीन, दीन दर हकीकत इंसान के किस पहलू के लिए है, अखलाकियात किस पहलू के लिए है, अहकाम किस लिए हैं, ये जो हम जितने दिन में दीन के नाम पे काम कर रहे हैं ये सारे किस लिए हैं, इन तमाम का एक फलसफा इंसान के अंदर वो जो हकीकी वजूद है इंसान का, कि जिसके बारे में अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि इंसान का ये जो वजूद है, ये जो बाहर की कायनात है, ये अलग दीन की निगाह में छोटा जहान, ये जहान है जो अभी आप देख रहे हैं कि इस जहान का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बावजूद इसके कि इंसान जो है इब्तिदा से अब तक इसके खोज में है, अब तक आप देखते हैं कायनात का एक बहुत बड़ा हिस्सा नाशनाख्ता है। हत्ता यही इंसान जो अभी ये चंद फुट का है, इसी के बारे में वेस्ट के अंदर जो आखिरी नजरिया पाया जाता है इंसान के बारे में वो क्या है, अ वंडरफुल एनिमल, कि एक हैरत अंगेज हैवान है। यानी मगरब भी अब फलसफे के एतबार से और इस फलसफे इंसान के बारे में, इसकी शनाख्त के बारे में जिस नतीजे तक आया है कि इस खाली एक इंसान के वजूद के बारे में भी इसकी कई जो जाहिरी तहें हैं, यानी एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से, यानी इंसान का यही जो जवाहिर है, इनके एतबार से भी अभी तक कई चीजें उसके लिए शनाख्ता शुदा नहीं है। जबकि अमीरुल मोमिनीन नजम बलागा में फरमाते हैं कि इंसान के अंदर एक पूरा जहान आबाद है, जो इंसान का के अंदर वजूद में है, ये जो कुछ बाहर है ये बाहर का आलम और जहान जो है ये महदूद है। इंसान के अंदर जो आलम बसता है और इसके अंदर जो एक अल्लाह ताला ने एक जहान रखा है वो लामहदूद है। लिहाजा आप देखें यहाँ कौन चाहिए, यहाँ वो चाहिए जो इंसान के नक्शे से आगाह हो, इलाही नक्शे के अंदर इंसान का नक्शा क्या है इससे आगाह हो, और इंसान की इन मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ मौकों के ऊपर जो है क्या करें, मबूस करें। ये काम अंबिया अंजाम देते हैं। इसमें एक अहम काम जो हजरत ईसा अलैहि सलाम के जमाने में हमें मिलता है वो ये है कि हजरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने के जो बनी इसराइल मुनहरिफ हो चुके थे शरीयत मूसा से, और उन्होंने एक इनहराफी दीन घड़ लिया था और हजरत मूसा की तालीमात से दिन ब दिन दूर होते गए। ये कौमें बनी इसराइल जब हजरत ईसा के जमाने तक पहुंचती है तो अब ये खुराफात उस जमाने वाली उतनी नहीं है, अब फैल चुकी है, अब इसकी बहुत ज्यादा वसत है। यहां तक वसत है कि हम देखते हैं कि हत्ता जो लोग बजाहिर दीने ईसा को कबूल कर लेते हैं यानी शरीयत हजरत ईसा को कबूल कर लेते हैं, इनके जवाहिर पे तो दीन मौजूद है लेकिन वजूद के अंदर जो है चीजें रच बस चुकी हैं। जैसा कि आपको तो अगर याद हो कुरान मजीद की जो आयत है सामरी के गुसाले के हवाले से, वहां पर कुरान ने एक बड़ी अहम ताबीर इस्तेमाल की है, उशरिबू फी कुलूबिहिमुल अजल, कि गुसाला जो है यानी अल्लाह के निजाम के पैरेलल एक जो निजाम है और उसके जो शाहकार हैं, उसकी जो तजलियां हैं, उसके जो मजाहिर हैं, वो इन इंसानों के वजूद में रच बस चुके हैं। अब ये बात कहाँ हो रही है, हजरत मूसा के जमाने में, और आप आज हजरत ईसा के जमाने में, तो उस वक्त तक ये जो इनहिराफी दीन है और शैतान ने जो ये जिसे कहते हैं दीन के खालिस चश्मे को जिस अंदाज में गदला किया है, और इस गदलेपन के अंदर इंसान जो हिदायत का नक्शा हाथों से खो रहे हैं और दिन ब दिन अपने अंदर वो तवानाई और इस्तेदाद कि जिसके नतीजे में एक नबी जो उस मुआशरे में अपनी विलादत के वक्त से एक मौजजाना अंदाज में आया है यानी हजरत ईसा की जो मौजजाना विलादत है और उसके बाद उससे पहले उनकी वालदा की जो पारसाई जोह तकवा और इफ्फत पाकदामनी जो उस मुआशरा देख चुका है, और उसके बाद हजरत ईसा का वहां पर जो है बिल्कुल बचपने में जिस अंदाज जो विलादत होती है, और उसके बाद जो हजरत ईसा अपनी वालदा की इफ्फत और पाकदामनी की जो गवाही देते हैं, इन तमाम चीजों को ये मुआशरा देख चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो नक्शा बेइनवाने नुमाइंदे इलाही बेइनवाने मासूम बेइनवाने खलीफे इलाही जिस नक्शे की तहत हजरत ईसा जिस तरफ बुला रहे हैं, ये मुआशरे का जो एक बड़ा तबका है वो क्योंकि उन खुराफात उन बिदतों के अंदर घिरा हुआ है, ये उन तालीमात की तरफ नहीं आ पा रहा। यहाँ पे एक बड़ा अहम काम है जो हजरत ईसा ने अंजाम दिया है, और ये हम यूं कहें कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियों के बारे में ये फरामोश शुदा पहलू है। अभी जो हमारे जहनों में हजरत ईसा के बारे में जो एक तस्वीर है या जिसको आज दुश्मन ने उठाया है जिस अंदाज में, वो एक मुनफ़इल किस्म की अखलाकियात हैं, यानी एक ऐसी मुनफ़इल किस्म की अखलाकियात कि जिसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर किसी ने दाई साइड पे थप्पड़ मारा है दाएं गाल के ऊपर, तो इंसान जो है वो बाई गाल भी आगे करे कि यहाँ पे भी मारो थप्पड़ ताकि बैलेंस हो जाए, या मसलन जैसे नहीं होता एक बेजरर इंसान। अफसोस यह है कि हमने क्योंकि अंबिया की जो इलाही तारीख है वो हमारे तक क्योंकि मसशुदा पहुंची है, इसलिए जब हम आयमा अलैहिस्सलाम की भी हयात मुबारक के बारे में आके देखते हैं तो वहां पर भी यही चीजें हैं। मसलन आप देख लें वाकया करबला के बाद इमाम जैनुल आबिदीन का जो चेहरा इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर, अगर हम अपने इंटरनल बात करें तशैयों के अंदर यानी शिया सोसाइटी के अंदर, तो आप बताएं क्या तस्वीर है हमारे जहन में, या आप आते आते आगे आ जाएं आप इमाम मूसा काजिम तक, हमारे जहन में क्या तस्वीर है इमाम मूसा काजिम की, एक मुल्फ नाउजुबिल्लाह एक मुनफ़इल इंसान, यानी एक ऐसे इंसान जिन्हें किसी चीज से आप गर्ज नहीं है, उन्हें चाहिए कि हाँ भाई जमात नमाज का टाइम हुआ है नहीं हुआ, सूरह तुलू हुआ है नहीं हुआ, सूरज अभी जवाल तक पहुंचा है नहीं पहुंचा, अभी जो है तस्बीह फलां पढ़नी है फलां इबादत करनी है, और बिल्कुल एक अलग थलग बैठने वाले अल्लाह अल्लाह करने वाले। कि हमने जो इमाम जैनुल आबिदीन का चेहरा बयान इमाम मूसा काजिम का जो चेहरा बयान किया है कि वो जिंदान में अल्लाह से ये दुआएं मांग रहे हैं कि मुझे तो खुदा है तो इसे खलवत चाहिए थी तो बड़ा अच्छा हो गया मुझे खलवत मिल गई है, और ये बात करके हम आधी बात करते हैं। देखें दीन में खुराफात का भी इजाद होती है, दीन में खुराफात का भी इजाद होती है, दीन में खुराफात इजाद करने के लिए बनी इसराइल और बनी इसराइल के उलमा का जो तरीकाकार था जिसको कुरान मजीद ने बयान किया वो क्या था कि हक का कुछ हिस्सा लेके बातिल के कुछ हिस्से के साथ इस तरह मिक्स करते हैं कि उसके नतीजे में एक नई चीज लोगों के सामने ले आते हैं। इसलिए कुरान मजीद ने बनी इसराइल के उलमा को सरजनिश करते हुए फरमाया कि वला तलबिसुल हक बिल बातिल, कि हक को बातिल के लिबास में मलबूस न करो, बातिल का लिबास न चढ़ाओ इसके ऊपर। और इसके नतीजे में क्या होता है, जब इस तरह दीन खुराफात की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उस वक्त क्या होता है, फिर इंसानों की अमली जिंदगी के अंदर दीन के बारे में जो बरखुर्द होती है, जो बिहेवियर होता है एक मुआशरे का दीन के बारे में, वो क्या है, कुरान मजीद के बकौल नोमिनो बेबास व नकफुरो बेबास, कि बाज चीजों को कबूल कर लेते हैं और बाज चीजों को कबूल नहीं करते। आप ये देखें कि हजरत ईसा का ये मुनफायल चेहरा दुश्मन ने, क्योंकि देखें दुश्मन बड़ा चालाक है, मेरे जहन में अब वो खुद हदीस के अल्फाज नहीं है, ज़ाहिरन इमाम अली अलैहिस्सलाम की नहजुल बलागा में जो है ये हिकमत है कि जिसका तर्जमा ये बनता है कि जो गाफिल, हाँ अलगाफिल ला युग्फल, अलगाफिलो ला युग्फल, कि जो गफलत का शिकार होता है, जो सोया हुआ होता है, यूं नहीं है कि इसका दुश्मन भी सोया हुआ हो, शैतान नहीं सो रहा, शैतान ने कसम खाई अल्लाह ताला के सामने, लाग़वियन नहु मजमाई, मैं कभी भी तेरे अंबिया के नक्शे को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं कभी भी उबूदियत के रास्ते पे नहीं आने दूंगा इंसानों को। इसलिए आप देखें एक जो अहम काम शजरा खबीसा ने जमीन के ऊपर, यानी इसी मस्ख शुदा जो मसीहियत है, कि जो बाद में हम इसी मसला जो यहूदियत है, इसने क्या किया कि हजरत ईसा के जमाने से जो काम शुरू किया था, जब हजरत मूसा के जमाने से जो काम शुरू किया था, ये आप देखते हैं कि जब हजरत ईसा के जमाने तक पहुंचता है, यहां पर मुनहरिफ शुदा यहूदियत जो मुख्तलिफ जमानों में आती रही है, जहां इन्होंने शरीयत हजरत मूसा के अंदर कई तहरीफात ईजाद कर ली, अब यहां पर क्या होता है कि यही यहूदियत, मुनहरिफ शुदा यहूदियत एक बहुत बड़ा चैलेंज है हजरत ईसा के सामने, बहुत बड़ा चैलेंज है। हजरत ईसा क्या देख रहे हैं, हजरत ईसा देख रहे हैं कि एक तरफ जो हजरत ईसा के पैरोकार हैं, जो यानी जो मानने वाले हजरत ईसा को, ये अभी तक निहायत इनके जाहिर के ऊपर तो दीन चढ़ा हुआ है, लेकिन इनके वजूद के अंदर कई चीजें वो हैं कि जो ये मुनहरिफ यहूदियत चाहती है, ये इनके अंदर बस चुकी हैं। लिहाजा यहाँ पर क्या करते हैं, एक जो बड़ा अहम पहलू है बिलखसूस यहाँ पर, वो अफराद के जो हयात तैयबा में जो तशकीलात की बहस हमने की है, इस्लामी तशकीलात, इस्लाम का समाजी जो रवाबित का जो पहलू है, और इंसान को उम्मत की तरफ जो ले जाने का जो ढांचा है इस्लाम के अंदर, इस्लामी तशकीलात, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम किस तरह का है, इसके बारे में जो हमने बहसें की हैं, अगर हम इसको अंबिया के जमाने में अगर जाके देखें तो हजरत ईसा एक ऐसा नबी है कि जो अपने जमाने की इन हालतों को देखते हुए एक खास तश्कीलात यहाँ परवान चढ़ाते हैं, एक कोरल टीम तैयार करते हैं हजरत ईसा। और ये हजरत ईसा की कोरल टीम का नाम कुरान मजीद के अंदर क्या है, हवारी। हजरत ईसा अपने इर्द गिर्द चंद ऐसे अफराद की परवरिश करते हैं कि जो हजरत ईसा से दर्स नहीं ले रहा है, लेक्चर नहीं सुन रहा है बैठ के। आज जो अभी हमारा मौजूदा दीन है, यानी ये जो मदरसों वाला दीन है, जो मदरसों की दीवारों में बंद है, और जिसके अंदर आप देखते हैं कि एक बड़ी यानी जो प्रोडक्ट हमारे पास तैयार होके आ रही है, उस प्रोडक्ट ने अपनी जिंदगी के अंदर अपने उसी इदारे के अंदर किसी फर्द को बतौर नमूने अमल नहीं देखा होता, दर्स लिया होता है, पढ़ा होता है, सीखा होता है बहुत कुछ तालीम के नाम पर, लेकिन वहां मौजूद उस बुनियादी फर्द का इन इंसानों की जिंदगी पे कोई असर नहीं है। बहुत भी हो तो क्या होता है, गौर करें, अभी आप में से मुझे नहीं मालूम कौन से ऐसे अफराद हैं जो कम से कम जो है 50+ हों, नहीं मालूम, अगर होंगे चंद तो शायद वो थोड़ा बहुत इस बारे में अगर गौर करें, पाकिस्तान में भी और इसके अलावा जो हमारा हौजे का तालीमी निजाम है, एक वक्त था कि उसके अंदर उस्ताद शागिर्द परवरी करता था, यानी उस्ताद फकत इल्म के नाम पे किताब की तालीम नहीं देता था, कि मिसाल के तौर पे सर्फ नाव मंतिक फिक उसूल तफसीर फलसफा और चार चीजें पढ़ाए और उसके बाद जनाब आप कौन थे मैं कौन था इंशाल्लाह कल मिलेंगे, ना ऐसा नहीं था। तालीम के अंदर एक बड़ा अहम पहलू जिसको हजरत ईसा की हयात मुबारका से भी समझने की जरूरत है, वो ये है कि आप देखें, एक इलाही मुअल्लिम, इलाही नक्शे का मुअल्लिम और इलाही हिदायतगर कि जिसने कल एक तागुती निजाम के सामने खड़ा होना है, ये यहाँ पर एक मुजस्सम नमूना है उस पूरे मैदान में। लिहाजा आप देखते हैं कि हजरत ईसा ने यहाँ पर अपने हवारियों को दरस अखलाक नहीं दिए बैठ के। हमारे जहनों में जो अभी अखलाकियात की तस्वीर है, चले जी मसलन एक आगा साहब को बुला लें, एक शख्सियत को बुला लें और वो कहीं से जो है थोड़ी देर के लिए बड़े धीमे लहजे में, खास अंदाज में इधर उधर की चार बातें करें और कहें इंशाल्लाह अल्लाह से डरें, खुदा का खौफ करें, फलां करें। अब मैं इसको स्क्रीन के पीछे देख रहा हूँ, ना मैंने इसके साथ जिंदगी गुजारी है, ना हमने इसके साथ मुआमला किया है, ना हमने इसकी सदाकत को आंखों से देखा है, ना हमने इसके अंदर खुशू और खुजू को स्क्रीन के अलावा मैदान में नहीं देखा। अभी जो हमारे पास दीन आ गया ना, स्क्रीन वाला दीन, यानी मल्टीमीडिया के पीछे दीन, प्रोजेक्टर्स के पीछे दीन, लाइव प्रोग्रामों के पीछे दीन, अब ये जो दीन है इसके नतीजे में क्या हो रहा है? मुमकिन है इंसानों के अंदर मालूमात नई नई दी जा रही हो, लेकिन वो जो इंसानों के लिए एक शख्स जो दीन का नुमाइंदा है, इसका जो उसवा का पहलू है, इसका जो इत्तेबा का पहलू है, ये कब ईजाद होगा इंसानों के अंदर? उस वक्त जब इसको मकामे अमल के अंदर कहीं पे देखें कि ये ऐसा है। अभी क्या हो रहा है, हमारा जो मौजूदा तालीमी निजाम है, जो हमारा असली तालीमी निजाम है, इसका तो अल्लाह ही हाफिज, इसको तो हम इसका तो मसाइब पढ़ते ही नहीं है, इसकी तो मुसीबतों का जिक्र ही नहीं करते, क्योंकि ये तो असलन जिसे कहते हैं कुछ है ही नहीं ऐसा। देखें तालीम और तरबियत के अंदर, इस पहलू पे गौर करें, तालीम और तरबियत के अंदर उस्ताद का महजर, उस्ताद का जो एक जिसे कहते हैं उसकी जो तरबियत की एक फिजा है, इसका दर करना बड़ा अहम अहम नुकता है, जो आज हमारे तालीमी निजामों में गायब है चीज। अभी मसलन जो हमारा असली तालीमी निजाम है, मुझे इंसाफ से खुद बताएं, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा ऐसा स्कूल कॉलेज इदारा ऐसा है कि जिसके अंदर एक फर्द एक उस्ताद की शख्सियत की वजह से परवान चढ़ रहा हो, न किताबों में लिखे हुए की वजह से कि जिसको उसने पढ़ के इम्तिहान देने और कर उसने कारकर्दगी लिखा के एक डिग्री लेनी और डिग्री की बुनियाद पे कल नौकरी है कहीं पे ऐसा कि तालीम के अंदर? जाहिर है अगर गौर करें, अगर मुअल्लिम की बुनियादी हैसियत इंसानों के तज़किया, इंसान की तालीम और तरबियत के अंदर ना होती, अल्लाह ताला खाली किताब भेज देता, कहता खैर है कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए और आके तदरीस करे। दीन तदरीस के लिए नहीं आया, और करें दीन तदरीस के लिए नहीं है, दीन दर्स नहीं है, दीन तालीम है। अंबिया बतौर उसवा यहाँ पे नमूने के पेश होने चाहिए। जो आज आप देखते हैं ये खला हमारे मुआशरे में मौजूद है और दिन ब दिन हम जितना देख रहे हैं, अभी क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? गौर करें, सवाल जहन में आता होगा ना, अब जब माशर्ती चीजों को देखते हैं, क्यों ऐसे हो रहा है कि दिन ब दिन जब हम मुख्तलिफ पढ़े लिखे लोगों को देख रहे हैं, सबसे बड़ी कजियां इन्हीं लोगों के अंदर है, पढ़े लिखे लोगों के अंदर, चाहे आप इसको मजहबी दुनिया में ले आए, चाहे आप इसको असली तालीम याफ्ता लोगों के अंदर ले आए, आप देखते हैं कई टेढ़ेपन इन लोगों के अंदर है। वो जो बजाहिर किसी तालीमी इदारे से, चाहे वो असरी तालीमी इदारा हो या जो हम बज़ाहिर जिसको तकसीम करते हैं असरी या दीनी, अगरचे ये तकसीम ठीक नहीं है, ये इससे सेकुलरिज्म की बू आती है, दीनों दुनिया नहीं है हमारे पास। ये जो हमारे पास है, आप देखें कि जो बज़ाहिर इन जगहों से नहीं पढ़ा हुआ उसका अखलाक निस्बतन बेहतर है, सुलझा हुआ है, मुअद्दब है, लोगों के साथ खुशू वजू से पेश आता है, तहम्मुल की सतह उसकी ज्यादा है, लेकिन ये जो पढ़े लिखे हैं इनके तामुल की लेवल आप चेक कर लें, और बिलखसूस जो दीनी पढ़े लिखे हैं, यानी जो हम दीन के नाम पे इस वक्त कह रहे हैं दीनी पढ़े लिखे, इनका आप देख लें। बड़ी वजह क्या है? एक बड़ी वजह यह है कि दीन की तालीम के नाम पे किताबें इनके सामने रही हैं, एक उसवा नहीं रहा इनके सामने, एक ऐसी शख्सियत कि जिसको वो पढ़े हुए पढ़ा हुआ जो कुछ इनके पास है किताब की सूरत में, वो कहीं पर मुजस्सम सूरत में भी मौजूद हो, जो पढ़ा रहा है, जो तहरीर के तौर पे चीज पढ़ा रहा है, उससे ज्यादा उसकी शख्सियत में वो चीज लागू नजर आए। इसलिए आप देखते हैं कि ये तालीम और तरबियत के अंदर बुनियादी खला है, जिसकी वजह से हमारे पास इस वक्त जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके अंदर उतना ज्यादा तहम्मुल कम है, उतना ज्यादा हुस्न ज़न कम है, उतना ज्यादा अखलाक कम है उसके अंदर, मैं दूसरे लफ्जों में यूं कहूं उसके अंदर उतनी ज्यादा इंसानियत कम है, मरी हुई है, एहसास ज़ियां उसके अंदर नहीं है उतना। एक बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि तालीम के नाम पे उसने किताबें पढ़ी हैं, तालीम के नाम पे नमूना अमल नहीं देखा, जबकि इलाही तालीम और तरबियत के निजाम के अंदर ये नहीं है कि आप एक सिलेबस डिजाइन करके दे दें, अब कोई भी आके इसको पढ़ाना शुरू कर दे। गौर करें, हमारा बड़ा झगड़ा क्या है? गौर करें, हमारा इस्लाम के अंदर जो तशय्यो का मुद्दा है, उस मुद्दा के अंदर एक बड़ा मसला हमारा क्या है कि भाई इलाही नक्शे को हर बंदा नहीं लेके चल सकता। क्या यही नहीं है जो हमारा एक आपस में एक बहुत बड़ा, यानी इस्लाम के अंदर एक बड़ा जो दो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं, तसन्नुन और तशय्यो। आप देखें कि इसके अंदर एक बुनियादी तरीन मसला, हमारा बुनियादी मसला तरावी नहीं है, हमारा बुनियादी मसला जो है हाथ बांध के नमाज पढ़ना या हाथ खोल के पढ़ना नहीं है, हमारा मसला ये नहीं है। हमारा असल एक बड़ा मसला क्या है कि देखें इलाही नक्शे को यूं नहीं है कि कोई भी आके कहीं पे आगे लेके चलना शुरू कर दे, नहीं लेके चल सकता। हर जमाने के अंदर उसको एक खास नुमाइंदा चाहिए जिसके खास पैरामीटर्स दीन ने बयान किए हैं। वो सवाल ये कैसे होता है कि जब आप दीन के इन पहलुओं पे बात करते हैं तो हम यहाँ इतने हसास हैं, हम कहते हैं पहला इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब, यहाँ हम इस बात के कायल हैं, लेकिन अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को और खुद को भी हम कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ वक्त दे रहे हैं अपना? कि सिलेबस कोई भी, अलबत्ता सिलेबस भी क्या है, ये भी खुद एक जेर सवाल एक चीज है कि भाई क्या है सिलेबस? और आया हिदायत का सिलेबस हर बंदा इसको पढ़ाएगा? हिदायत के सिलेबस की तालीम हर एक दे सकता है? ऐसा नहीं है। लिहाजा आप देखें कि हजरत ईसा ने जो बुनियादी काम किया यहाँ पर, सबसे पहले हजरत ईसा ने इन खुराफात, क्योंकि जाहिर है इतने बड़े इनहराफ के तूफान के सामने, इतने बड़े इनहराफात के सैलाब के सामने हजरत ईसा को जिन मजबूत चीजों की जरूरत थी कि जिनके जरिए से इस सैलाब, सैलाब तहरीफ को रोक सकें, उसमें पहला काम हजरत ईसा ने ये किया कि अपने इर्द गिर्द ऐसे शागिर्द तैयार किए जिनको कुरान ने हवारी का नाम दिया, या अंसार, मन अंसारी अल्लाह, कि मेरे साथ अल्लाह के नक्शे में नुसरत करने वाला कौन है, इनको तैयार किया। और हम देखते हैं कि इनकी तैयारी भी कैसे की, यहाँ पे ये नुकता अर्ज किया है कि कोई यूं नहीं है कि हजरत ईसा ने कोई मदरसा खोला। अभी जो हमारा स्टाइल है ना, अभी हम जो तालीम के नाम पे अगर अजीब बनाया हुआ है ना, दीन पढ़ना है तो मदरसे में आ जाओ, दुनिया पढ़नी है तो यूनिवर्सिटी चले जाओ, ये वही सेकुलरिज्म है जो इस वक्त हमारे वजूद के अंदर रचा बसा हुआ है। किसने कहा है दीन पढ़ना है तो मदरसे में आओ, दुनिया पढ़नी है तो यूनिवर्सिटी में जाओ? पहले तकसीम ही गलत है कि उधर दुनिया इधर दीन है। इत्तेफाकन अभी अगर हम सूरत हाल को देखें तो इस वक्त खुद दीन के नाम पे ये इदारे जो हैं, इस वक्त खुद दुनिया परस्ती और दुनिया गराई का मरकज बने हुए हैं। हमारे लिए मसला ये नहीं है, हम दो इमारतें खड़ी करते हैं, वही जो हमारी, क्योंकि हमारी पैराडाइम ऐसे डिजाइन हुई है कि ये दीन है ये दुनिया है। अब इसके अंदर क्या होता है? हाँ जी, अगर आपने दुनिया सीखनी है तो आप इधर आ जाएं, और अगर दीन सीखना है तो इधर आ जाएं। ये कौन सी चीज है? ये वही काम है, और करें, ये वही काम है जो तारीख के अंदर मस्ख शुदा मसीहियत ने अदियाने इलाही के साथ किया है। कैसे? मसलन आप कहते थे कि ये नबी है और ये बादशाह है, मुख्तलिफ जमाने जो गुजरे हैं हमारे पास उसके अंदर। अभी आप देख लें, मसलन यहूद, यहूद की नजर में हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, ये अंबिया जो हैं इनको नबी नहीं कहते, इनके बारे में क्या निगाह है, किस सतह की निगाह है? यानी एक तरफ आप क्या कहते हैं, ये जो दीन और दुनिया की जुदाई है कि एक बिल्डिंग का नाम क्या है कि यहाँ दुनिया सिखाई जाती है, एक बिल्डिंग का नाम यह है कि यहाँ दीन सिखाया जाता है, ये क्या है? ये वही सेकुलरिज्म है। अगर ना हमारे पास इल्म के अंदर दीन, इल्म के अंदर दीनी इल्म और दुनियावी इल्म नहीं है, इल्म इल्म है। अगर इल्म अल इल्मो नूरुन है तो कहीं पर भी हदीस के अंदर नहीं कहा गया कि ये दुनिया का इल्म है ये दीन का इल्म है। हम क्यों आके ये गलत तकसीम करते हैं कि दुनिया को दीन के मुकाबले में, दीन को दुनिया के मुकाबले में खड़ा कर देते हैं? दुनिया के मुकाबले में जो चीज है उसका नाम आखरत है, दुनिया के मुकाबले में दीन नहीं है। लिहाजा आप देखें हजरत ईसा ने यहाँ पे क्या किया, एक कोरल टीम तैयार की, और इनके नतीजे में हजरत ईसा ने क्या किया, इनकी तरबियत कैसे की? हजरत ईसा की इनकी तरबियत मदरसा बना के, कोई सेंटर बना के, कोई एकेडमी बना के, कोई मुआशरे से अलग थलग खानकाह बना के नहीं है कि बाहर वालों का आना, जब बाहर वाला अंदर एंटर हो तो उसको लगे पता नहीं मैं किसी अडयाला जेल में आ गया हूं, या उसको यूं लगे कि पता नहीं मैं किस खौफनाक किस्म के टॉर्चर सेल में आ गया हूं। ना, ऐसा नहीं है। हजरत ईसा ने इनकी तरबियत खुद इनकी साथ जिंदगी गुजार के की है, वही चीज जो अंबिया के बारे में बिलखसूस खत्मी मरतबत के बारे में कुरान मजीद ने फरमाई है। रसूल अल्लाह क्या फरमाते थे, आना बशर मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह जिंदगी गुजारता हूं, मैं तुम्हारे मुआशरे का फर्द हूं। एक जो आज बड़ा मसला बना है तकद्दस के नाम पे और मानवियत और रूहानियत के नाम पे, वो क्या है कि जो जितना जितना मानवी होने का दावा करता है, जो जितना जितना पारसा जाहिद मुत्तकी होने का दावा करता है, उतना उतना मुआशरे की सफों से गायब है। आप देख लें इस वक्त मुआशरे की सफों से गायब है। अभी हमारा ताल्लुक अवाम के साथ तकरीर की हद तक है, अभी हमारा अवाम के साथ ताल्लुक दर्स देने की हद तक है। अंबिया दर्स देने वाले नहीं थे जमाना के अंदर, क्या लेक्चर जड़े लेक्चर दें तकरीरें करें और उसके बाद चले जाएं। आप कौन थे, मैं कौन था, मुझे से क्या गर्ज है, ऐसा नहीं था। अंबिया ने सबसे पहले अपनी इस कोरल टीम के अंदर जो हजरत ईसा ने बिलखसूस बनाई, इसके अंदर इनके लिए उस्वाए अमल थे। हजरत ईसा के पैरोकार हजरत ईसा अगर कह रहे थे मिसाल के तौर पर के देखो तुम्हारे अंदर हवा हवस की परस्तिश नहीं आनी चाहिए, तो ये हजरत ईसा जबान से नहीं कह रहे थे, हजरत ईसा के पैरोकार ये जो हवारी तबका है ये आंखों से देख रहा है कि ये इंसान कितना ज्यादा इलाही नक्शे का पैरोकार है और हवा हवस की पैरवी नहीं कर रहा, आंखों से देख रहे थे। यूं नहीं था कि तकरीर करने के टाइम पे आए तो जो है वो इंकलाब की बातें करें, नजरियात की बातें करें, पता नहीं इलाही तहजीब और तमदन की बात करें, और जब अमली जिंदगी की बात आए तो खूबे इशराफिया टपके आपसे, आपका जो है आपके पास लेटेस्ट तरीन आखिरी गाड़ी जो है सिक्योरिटी के नाम पे, और पता नहीं जो है ना अब ये जैसे कहते हैं वो जैसे माविया के जमाने के अंदर था, उसने बहुत सारे काम किए इस्लाम के नाम पे, बहुत सारी इमारतें तामीर की, जब बाद में इतराज किया गया तो उसने कहा कि ये तो इस्लाम की अजमत के लिए, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो मैं अपने लिए नहीं कर रहा। मैं एक जुमला अभी अल्लाह ने मेरे जहन में डाल दिया, ये आज के दिन की मुनासबत भी है, हैफ है कि बेतौफीकी रही हम भी इस पर आज कुछ नहीं कर सके। आज का दिन मुफ्ती जाफर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा मुफ्ती जाफर रहमतुल्लाह अलैह की वफात का दिन है 29 अगस्त। 29 अगस्त पाकिस्तानी मिल्लत के लिए कायदे फकीत अल्लामा मुफ्ती जाफर रहमतुल्लाह अलैह के फुकदान का दिन है आज का दिन जो ये गुजरा है। हैफ है इस पर हम कुछ नहीं कर सके, ये जो है गफलतें हैं हमारी। मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, गफलत है, कुछ नहीं किया हमने, आज गुजर गया दिन, कुछ भी इस बारे में ना पोस्ट ना ही कुछ इस पर कुछ लिखा ना कोई बयान किया, कुछ भी नहीं किया, और ज़ाहिर इसी की सजा भुगत रहे हैं अभी हम, कि ऐसी शख्सियतें महजूर हैं हमारे अंदर, पता ही नहीं है। उस्वाए अमल, उस्वाए पारसाई, उस्वाए तकवा अल्लामा मुफ्ती जाफर रहमतुल्लाह अलैह, जो कहा है वो अमल में दिखाया है। आज क्या हो गया है, ये स्क्रीनों के पीछे वाला दीन, स्क्रीनों के पीछे वाली तकरीरें, प्रोजेक्टर्स के पीछे वाले लेक्चर्स, इन चीजों की वजह से क्या हो गया है कि मकाम अमल के अंदर अवाम उस चीज को नहीं देख रही। वरना आप देखें इस वक्त कभी जाएं और अल्लाह करे पाकिस्तानी कौम हमारा मुआशरा जो है इस चीज का मुतालबा करे कि हमारे दीनी खवास की कितनी प्रॉपर्टीज हैं इस वक्त जो दीन के नाम पे हैं, दीन के नाम पे हैं, कितनी प्रॉपर्टीज के अंदर इस वक्त बजाय दीन का काम आगे बढ़ने के अपने वरसा में चीजें तकसीम है, जिसे हम कहते हैं कि बैतुल माल मालुल बैत बना हुआ है, घर का माल बना हुआ है, घर का कोई हिसाब किताब नहीं है, बच्चे लैंड क्रूजरों में घूम रहे हैं दीन के नाम पर। देखिए मैं ये बात चीजें जो अर्ज करता हूँ, एक चीज और भी अर्ज करता हूँ आपके इस इतला के लिए, ये जो मैं बाज बातें करता हूँ किसी के जहन में ये ना जाए कि मैं शायद सुनी सुनाई बातें करता हूँ या ऐसी चीजें बयान कर रहा हूँ जिसका जो है ना इस हकायक की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ना, ऐसा नहीं है, आंखों से चीजें देखी हुई हैं, जिंदगियां देखी हुई हैं, खुए इशराफियत रची बसी हुई देखी है। उस वक्त में जब एक तरफ फक्र नादारी है और एक तरफ माशरा इस पस्ती और मुश्किल का शिकार है, एक तरफ हम सुनते हैं कि इमाम खुमैनी जब वहां पर मौजूद हैं, नजफ के अंदर इनकलाब की मूवमेंट चल रही है, तो देखते हैं कि इमाम खुमैनी के घर में जो है उस वक्त नजफ की सख्त तरीन गर्मी के अंदर घर के अंदर कोई जो है ठंडा का कोई इंतजाम नहीं है, वहां पे जाहिर है एक पूरी तहरीक के लीडर है इमाम खुमैनी। उस वक्त जो है कुछ इमाम के शागिर्द कहते हैं कि आप ये इंतजाम कर ले, ये वो, जैसे आज हम कहते हैं ना इंशाल्लाह हम अगर सुकून से रहेंगे, हम अगर अच्छा खाना खाएंगे, हम अगर अच्छी सेहत के साथ रहेंगे, हम अगर इतने घंटे फलां जगह पे ये जो है इस्तराहत करेंगे, तो इंशाल्लाह इसके नतीजे में इस्लाम को फायदा होगा। ये जो अभी हमने तौजीहें की हुई हैं और इस वक्त जो हालत है, आप देखें मखमैनी ने क्या फरमाया, सवाल किया कि इस वक्त आया नजफ के अंदर और ईरान के बारे में कहा कि इस वक्त आया लोग इस हालत के अंदर है, आया लोगों की अमूमी हालत ये है, सबके पास चीज पहुंच चुकी है। अभी आप मराज एजाम को देख ले, अपने किस सादगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आयतुल्ला सिस्तानी हाफिज़ुल्लाह को आप देखें, घर उनका देखें नजफ के अंदर, जिंदगी उनकी देखें किस अंदाज की है, रहबर मौजम को देखें किस तरह की जिंदगी है, घर की जिंदगी किस तरह की है, रहबर के घर की जिंदगी इस कदर निहायत सादा जिस्तगी वाली है कि एक रहबर के सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कहते हैं कि हमने कई बार मिन्नत की कि हम हमें इजाजत दें कि हम ये जो आपकी जिस तर्ज की जिंदगी है इसको बाकायदा तौर पर यानी क्लिप्स में या वीडियो की सूरत में लाया जाए ताकि लोग इसको देख सके। अगर रहबर ने कहा कि इसकी इजाजत नहीं है, कोई इसको यकीन नहीं करेगा इस चीज के ऊपर। आप एक तरफ इनको देखें और एक तरफ जो हमारी खुआ जो इशराफी गरी की जिंदगी है, यहां पर आप देखें कि हजरते ईसा फकत जबान से नहीं यहां पर बयान कर रहे कि किधर जाना है क्या करना है, लेक्चर नहीं झाड़ रहे हजरत ईसा यहां पर। एक हवास अपने गिर तैयार किए, इनको अपने अमल के जरिए से दिखा रहे हैं इलाही तकवा क्या होता है, हजरत ईसा के अमल में देख रहे हैं, इलाही दर्द क्या होता है, हजरत ईसा के अमल में देख रहे हैं, इलाही खलीफा होने का मतलब क्या है, देख रहे हैं कि हजरत ईसा सरापे पैकार बने हुए हैं उस वक्त के निजामे कुफर के सामने, इसको आंखों से देख रहे हैं, तकरीर से नहीं आंखों से देख रहे हैं। हजरत ईसा अगर जोहदो पारसाई तकवा और कनात की बात कर रहे हैं तो इसको अमल में देख रहे हैं कि हजरत ईसा की जिंदगी ऐसी है। लिहाजा ये बाईमान जो खवास हैं जिनको अल्लाह ने हवारी करार दिया, अंसार करार दिया, इन्हीं के बारे में कुरान मजीद ने, इन्हीं के नतीजे में जो तरबियत याफ्ता तबका है मसीहियत के अंदर हजरत ईसा के जमाने के अंदर, इन्हीं की तरफ इशारा सूरह मायदा की आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वला तजिदन्ना अक्रबहुम मवद्दतन लिल्लजीना आमनू अल्लजीना कालू इन्ना नसारा। ये जो हजरत ईसा की तालीमात पे कारबन तबका है, सबसे पहले जिसका एक अहम मिसदाक यही हवारी है, यही जो हजरत ईसा की कोरल टीम है। कुरान फरमा रहा है कि अगर मोमिनों के साथ कोई मवद्दत कुर्ब दोस्ती अगर किसी की इजाद हो सकती है तो इस मसीहियत के साथ इजाद हो सकती है जो इन्हिराफ से बची हुई मसीहियत है, जो हजरत ईसा की तालीमात के ऊपर कारबंद है, जो इन हजरत ईसा के हवारी ने जो तालीम दी है इन तालीमात पे जिन्होंने अमल किया। लिहाजा आप देखते हैं कि हजरत ईसा तरबियत करते गए, तरबियत करने के बाद इनको बिठा नहीं दिया, तरबियत करने के बाद नहीं कहा कि खाली जाके दस दो, बल्कि इनको उस वक्त के जुग्राफिया के अंदर मुख्तलिफ जगह पे फैला दिया। ये हजरत ईसा के साहिबे असरार अंसार थे। अजीब नेटवर्क है ये, अभी बहस हमारी लंबी हो जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाता कि मुनहरफ शुदा यहूदियत ने क्या किया हजरत ईसा के जमाने में, जो मसाइल खड़े किए। एक तरफ आप देखते हैं एक बड़ा मसला क्या है कि मसीहियत ने उस वक्त वो जो रिबाखारी और सूदखारी का जो सिलसिला चला आ रहा था उसको ओज पे पहुंचाया। यानी आप गौर करें, इस पे गौर करें, हालत शरीयत हजरत मूसा के इनहराफी पैरोकारों की ये हो चुकी थी कि जो माबत था इबादत की जगह ओरशलम के अंदर, वहां माबत के बाहर ये बाकायदा तौर पर वहां पे बेंच लगा के बैठते थे, बेंच जिसको हमारे पास मुख्तलिफ जबानों के अंदर, मसलन फ्रेंच जबान के अंदर उसका एक तलफ्फुज है, और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं इंग्लिश जबान के अंदर एक उसका तलफ्फुज है बेंच जिसको कहते हैं, या एक तलफ्फुज के साथ बैंक, वो जो इब्तदाई असला है, ये जो कलमा है BANK बैंक, ये जो बैंक है ये दर हकीकत ओरशलम का जो माबत था उसके बाहर वो जगह थी कि जहां पर यहूदी, ये जो मुनहरिफ शुदा यहूदी हैं, ये यहूदी वहां पर बैठकर हजरते ईसा के पैरोकार ईसाइयों को क्या करते थे, सूद देते थे, सूद सूद के ऊपर इनसे मामलात करते थे। इसको जो है हॉलीवुड की एक मूवी आ, मैं नाम यहां इस पे नहीं लूंगा, ज्यादा उस तरफ नहीं जाऊंगा, जो जो है एक खास अंदाज में जो है इस मंजर को फिल्माया है उसके अंदर, कि कैसे हजरत ईसा जो है यहाँ आते हैं और यरूशलम के बाहर जब देखते हैं कि भाई ये क्या लगा हुआ है, अंदर इबादत हो रही है और बाहर जब वो निकलते हैं इबादत करके, यहाँ पे यहूदी उस वक्त बैंक की इब्तिदा रख के बैठे हैं। बैंक दर हकीकत अर्ज किया है उस जगह को कहते हैं जहां पर ये कुर्सी लगा के मेज लगा के बैठते थे और यहां पर सूदी मामलात अंजाम देते थे। यानी लोग कलीसिया से बाहर आते, ज़्यादा जरूरियात जिंदगी है, इक्तिसाद के ऊपर गलबा किसका है, यहूदियों का है, लिहाजा ये क्या करते थे, इनके साथ सूदी मामलात करते। हजरत ईसा यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, इन्हीं जो वहां पे मेजें लगी होती थी या जो उनकी जो जगह होती थी जिसपे ये मसलन वहां पे उस वक्त सूदी मामलात अंजाम देते थे, हजरत ईसा आते हैं और इनको क्या करते हैं, मिलिया मेट करते हैं, तहस नहस करते हैं, उनको जो है उस वक्त उनके साथ मुकाबला करते हैं। हजरत ईसा का ये पहलू किसी ने नहीं बयान किया, और करें आप तशय्यों में तो दूर दूर तक इस पे कोई बात नहीं है कि भाई हजरत ईसा मुनफ़इल अखलाक की तरवीज करने वाले इंसान का नाम नहीं है। हजरत ईसा एक तरफ जिस मानवियत को परवान चढ़ा रहा है उसके अंदर, इंसानों के अंदर इलाही नक्शे की पैरवी, एक मासूम की विलायत में, जैसा कि आप यहाँ पे मौजू में आपने देखा होगा हमने क्या लिखा है, विलाई मानवियत ना, हर तरह की मानवियत, हर वो अखलाकी तरबियत जो दिन ब दिन इंसान को वली के नक्शे से दूर करे। वली कह रहा है करबला चलना है और ये अखलाक कह रहा है और दीनी इबादत कह रही है नहीं अभी इसी काबा के गिर चक्कर लगाना है। वली कह रहा है कि इस वक्त जो है जंग के लिए आओ और ये यहाँ पे मूसा अशरी बैठ के दरस अखलाक दे रहा है और जो इसके पैरोकार यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये मानवीय अच्छा ये दीन के अंदर ये अखलाकियात चाहिए ना, वो मानवियत के जो विलायत के लिए इंसानों को तैयार करे। जाहिर है अखलाक तज़किया रूहानियत मानवियत का बड़ा काम यह है कि इंसानों के अंदर उबूदियत के इम्तिहानों के अंदर इस्तेकामत की सलाहियत ईजाद कर सके। अखलाकियात इसलिए है, इसलिए अखलाकियात है, वगरना अखलाकियात खाली धीमा बोलना और अगर ना महरम सामने से गुजर पड़े तो आप थोड़ी देर के लिए निगाहें नीची कर दें और मोटे मोटे चंद चीजों से फकत इब्तदाई सतह पे परहेज करें, वो चीज अंदर रची बसी ना हो। हया आंखों से तब टपकेगा जब पहले इंसान के वजूद के अंदर उसकी कहीं पे कोई जड़ें मौजूद हों। इंसान की जबान लहव से और इंसान की जबान फजूलियात से उस वक्त रुकेगी जब इंसान के अंदर कुछ चीजें पहले सेट हो चुकी हों, वगरना मुमकिन है वक्ती तौर पे कोई हालत अपना ले। लिहाजा हजरत ईसा के को हजरत इसके अंदर एक सबसे पहले बेस कोरल टीम को कि जिसके बाद जैसा कि कुरान ने फरमाया है कि जब तुम सीख जाते हो तो उसके बाद क्या है, अब जाओ और फैल जाओ जमीन के ऊपर और जाओ और लोगों को हिदायत और तबलीग करो। लिहाजा ये जब गए मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तो इन्होंने हजरत ईसा बिनवान खलीफा इलाही उसके अल्लाह की तरफ से जो दिया हुआ नक्शा था उसकी इताअत के लिए लोगों को तैयार करना शुरू किया। बस हजरत ईसा का जो पहला तज़किया था इन खवास की निस्बत वो क्या था कि इनको हक की इताअत के लिए और हक की विलायत के लिए इनके अंदर ज़र्फ़ियत ईजाद करें। और इसी तरीके से जब ये खवास गए फैले जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तो इन्होंने ये काम अंजाम दिया। हजरत ईसा के सामने जो बड़ा चैलेंज है, एक तो जो हजरत ईसा के पैरोकार हैं यानी अवाम के अंदर भी, एक तो इनकी दीनदारी को अमीक बनाना है, इनके अंदर इस मिसाल पे गौर करें, इनके अंदर मुदाफ़ाती निजाम को मजबूत करना है। दीन का जो एक अहम काम है, अखलाकियात का जो एक अहम असर है, इंसान के अंदर मुदाफ़ाती निजाम को मजबूत करना है। जैसे आप देखें ना क्या होता है आज, क्या होता है मसलन सेहत और हेल्थ सलामत के लिए क्या करते हैं कि मसलन कहते हैं ऐसी ग़ज़ाएं खाएं, मिसाल के तौर पे सालिम ग़ज़ा होनी चाहिए, आपके सोने के औकात ये होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलां होना चाहिए, ये सारा कुछ किस लिए करते हैं, सब कुछ किस लिए करते हैं, इसलिए कि इंसान के अंदर जो मुदाफ़ियाती निजाम है जिस्म का वो कवी हो सके। इसके अलावा कोई और चीज है, सेहत और किसको कहते हैं, ये जब आप कहते हैं कि फलां बंदा हेल्थी है तो इसे क्या मुराद है, खाली इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ुलात जो हैं इनका मजबूत होना है या नहीं, इंसान के अंदर मुदाफ़ियाती सिस्टम का मजबूत होना है जो आज हमारे अंदर नहीं है। आप देख लें यहूद ने जो एक बड़ा काम किया है इस वक्त जमीन के ऊपर, क्योंकि कुरान ने कहा है, कुरान ने इंसानों को ता क्यामत रहनुमाई की है कि देखो शैतान तुम्हारे हर सो नस्ल का दुश्मन है। शैतान तुम्हारी इब्तदाई तरीन जरूरियात को क्या करेगा, तबाह बर्बाद करेगा। आज आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर जो गजा का निजाम है, कभी आप जाके सर्च करें, एक डॉक्यूमेंट्री है सीड्स ऑफ डेथ, सीड्स ऑफ डेथ, ये जो अभी बीज है हमारे पास जो हमारी खुराक के लिए जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। इस वक्त आप दुनिया के अंदर जाके देखें कि एग्रीकल्चर के ऊपर इस वक्त जो सहूनियत है उसने क्या कुछ किया है। पूरी दुनिया से गौर करें, पूरी दुनिया से कहीं पर भी अगर कोई कुदरती बीज मौजूद थे फसलों को उगाने के लिए, पूरी दुनिया से इस वक्त जो है उन्होंने जमा कर ली है। आप बेशक अपने इर्द गिर्द में गौर करें कहां पर इस वक्त नेचुरल बीज मिलता है आपको, कहां पर इस वक्त ऐसी जमीनें मिलती हैं कि जिन जमीनों को आप कहें कि वाकई इनके अंदर जो इस वक्त खुराकें उग रही हैं, जो सब्जियां उग रही हैं, जो जरात उग रही है, ये बड़ी सालिम जरात है, कहां पर है। आप आ जाकर आप देख लें, आपके फ्रूट, आपकी सब्जियां, आपके फल, आपका ये मुर्गी, ये फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाली चीजें, ये जो इनकी इनका जो इब्तदाई चीजें हैं कहां से हैं। शैतान देखें कैसे काम करता है अपने इन्हीं शजरे खबीसा के जरिए से। बस एक तरफ हजरत ईसा ने अपने पैरोकारों के अंदर कुव्वत मुदाफ़ेअत निजामे कुफर के सामने इसको परवान चढ़ाना है, दूसरी तरफ जो दुश्मन ने एक अहम चीज पे हाथ रखा है इक्तिसाद, जैसा कि मैंने पिछली नशस्तों में भी अर्ज किया। बहरहाल ये यहूद शनासी के हवाले से अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कभी इस पे मैं बहसे कर सका, आज तक सुना यही है कि जो लोग यहूद शनासी पे काम करते हैं तो इतना ज्यादा काम होने नहीं दिया जाता, ये भी जहन में रखें आप। ये ऐसे हकायक हैं यहूद के बारे में कि अगर इन पे प्रॉपर काम हो तो काम नहीं होने दिया जाता। यानी इतना अजीब मौजू है बायो टेररिज्म का इस वक्त बिलखसूस यहूद का कि आप देखें ईरान के अंदर एक शख्सियत थी फरजुल्ला सलाशूर के नाम पे, जिन्होंने बहुत सारी इस्लामी मूवीज दिफाए मुकद्दस से मुतल्लिक भी बनाई हैं, उसके अलावा ये जो हजरत यूसुफ के नाम पे जो पूरा सीरियल है, और इसके अलावा और भी अंबिया के हवाले से जो उन्होंने बनाए हैं। गौर करें इस मिसाल पे यहूद कितना तेज है, यहूद आज कर क्या रहा है, इसी मिसाल पे गौर करें, फिर आगे जैसे कहते हैं ना समझने वालों के लिए इशारा काफी, आप इसके बाद खुद समझें। इसी इंसान ने हजरते मूसा की हयात मुबारका पे पूरी जैसे कहते हैं सीरियल बनाने के लिए अभी फिल्मनामे के मरले में थे, लिखने के मरले में कि इसको कैसे फिल्माना है, और इसी बंदे को यहूद ने बायो टेररिज्म के जरिए से गायब कर दिया। बायो टेररिज्म के जरिए से यहूद इस तरह काम करता है, आज हम असल मुतवज्जे ही नहीं है कि इस वक्त आलमी निजाम के अंदर यहूद कहां कहां पे है। इस यहूद ने उस जमाने के अंदर क्या किया कि इबादत की जगहों को भी इतना ज्यादा करप्ट बना दिया कि जो लोग इबादत कर क्या थे बाहर क्या थे, बाहर क्या थे वहां पर बैंक, ये जो आज बड़ा एक मुकद्दस नाम है ना हमारी, जिससे हमारी शहरत जिसके साथ जुड़ी है उसका नाम बैंक है। अभी आया ना ये जो इतने हमारे सियासी मैदान में इतने बोलते हैं, इतना सियासत पे बात करते हैं, अब यह मुझे बताएं इक्तिसादियात के मैदान में उर्दू जुबान में कितना काम है। बैंक के बैंक जिसको आप कहें मुकद्दस सामरी का गोशाला जो है आज के जमाने के अंदर, कभी आपने स्टॉक एक्सचेंज के बाहर वो गोशाला देखा है, वो जो गोशाला एक बना हुआ होता है स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, ये जब बैंकों की और ये जो बड़ी बड़ी ऐसी इमारतें होती हैं उसके बाहर ये जो एक खास किस्म का हैवान है, आप देखें किसकी तरफ इशारा है। वाजे शैतान कह रहा है कि देखो तुम्हें किधर लेके जाना है, कुरान कह रहा है कि शैतान तुम्हारे नुत्फों में शामिल है, शैतान तुम्हारी बुनियादी तरीन जरूरतों में शामिल है और उसने तुम्हें वहां से अगवा करना है। आज ऐसे नहीं है, फरजुल्ला सलाशूर मैंने अर्ज किया नाम जो हजरत मूसा की फिल्म पे पूरे उस पर काम करना चाह रहे थे, तो आप देखें कि हजरत ईसा ने यहाँ पे क्या किया। हजरत ईसा एक मुसले हैं, हजरत ईसा एक मुनफ़इल किसी कोने में बैठ के लोगों को इनफरादी दीन सिखाने वाला इंसान नहीं है कि जो कहे अच्छा अच्छा है बुरा बुरा है बस ठीक है। हमारे जहन में तो ये तस्वीर है कि बस हजरत ईसा किसी जगह पे मसलन जो है ना किसी पीर की तरह बैठ जाते थे, एक बंदा कोढ़ी आया तो हजरत ईसा मसलन दम दुरूद फेर देते थे, उसके सर पे हाथ फेर देते थे, जिस्म पे हाथ फेर देते थे, कोई मुर्दा आ गया है तो हजरत ईसा मसीह जो है ना करिश्मे दिखाते थे, जैसे आज हम समझते हैं ना दीन के बारे में। वलीउल्लाह कौन है? जो करिश्मे दिखाए। वलीउल्लाह की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जिस मुआशरे के अंदर मौजूद है उस मुआशरे के अंदर अल्लाह की उबूदियत के लिए कितनी ज़र्फियत इंसानों के अंदर ईजाद कर सके। वलीउल्लाह की सबसे बड़ी निशानी यह है। अगर कोई निशानियां ये समझे कि चलती ट्रेन को अगर कोई रोक दे तो ये वलीउल्लाह है, तो ये काम तो इस वक्त हिंदू मुर्ताज भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आप जाएं इनकी हिस्ट्रियां उठा के देख लें, ये जो हिंदू मुर्ताज हैं जो रियाजतें करते हैं कितने कितने साल तक, हत्ता शहीद मुतहरी ने ये लिखा है कि अगर किसी इंसान को जमीन और आसमान के दरमियान हवा में उड़ता हुआ भी देखो तो इसको ये ना कहो कि ये दीन की वजह से यहां तक पहुंचा है। खुद इंसान के वजूद में इतनी ज़र्फियतें हैं। इंसान अगर अल्लाह का पैरोकार न भी हो, अगर कुछ चीजों में इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल करता है, अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल करता है, तो इसको ये सलाहियतें मिल सकती हैं। मुमकिन है कि इंसान किसी दीन का पैरोकार ना हो, किसी शरीयत का पैरोकार ना हो, लेकिन पानी पे चल रहा हो। इसके लिए दीन का पैरोकार होना जरूरी नहीं है, लेकिन इंसान के नफ्स को अल्लाह के लिए मुती करना यह सबसे बड़ा जिहाद है, ये सबसे बड़ी खुदसाजी है इंसान की। मुमकिन है वही मुर्ताज, दिक्कत करें, वही मुर्ताज जो इतने काम कर रहा है लेकिन एक जगह पर अपने सरकश नफ्स के सामने झुका हुआ है, और वो क्या है? अल्लाह की इताअत की निस्बत। वही चीज जो शैतान के पास थी। शैतान आप देखें कहां से चला और कहां अल्लाह ताला की उबूदियत की जो रैंकिंग की टीम थी, यानी फरिश्ते, उलुल अज़्म फरिश्ते, आप देखें जो यानी उस बड़ी उस वो जो असली यानी आप देखें जो टीम थी उसके अंदर जाके इमाम जमात बन गया, यानी पेश इमाम बन गया, यूं कहूंगा उनका भी जो है वो जाके इबादत इबादतों के ऊपर यहां तक पहुंचा। लेकिन जब उस असल उबूदियत के मसले में मार खा गया तो ये मुर्ताज क्या है? लिहाजा कभी भी याद रखिएगा इस बात को, कभी भी किसी इंसान की चार चीजों की पेशबीनी करने को उसका वली खुदा होना ना समझ लें। कभी भी किसी इंसान से चंद मसलन सुपर नेचुरल काम देखकर ये ना समझ लें कि पता नहीं ये बड़ा वली खुदा है, ना ऐसा नहीं है। अभी है हमारे पास जो है वो ऐसे जमीन के ऊपर ऐसे मुर्ताज हैं, ऐसे इल्म हैं कि जिनके नतीजे में इंसान अगर अपने कुछ तमायलात, अपनी हवा हवस की कुछ चीजों को अगर इंसान जो है उस पर कंट्रोल करे तो उसको ये सलाहियतें मिल सकती हैं। ये सलाहियतें इंसानी इरादे की। इसलिए शेख मुतहरी कहता है कि अगर किसी को पानी पे चलता हुआ देखो, किसी को हवा में उड़ता हुआ देखो, तो ये न समझ लो कि क्योंकि वली खुदा इसलिए ये हो सकता है, इससे ना कोई भी वो कर सकता है। कोई भी इंसान अगर अपने हवा व हवस, अपनी बुनियादी तरीन कुछ चीजों को खास अंदाज में अगर लेके चले, वो किसी दीन का पैरोकार ना हो, तब भी उसके लिए चीजें मुमकिन है। इसलिए ये बुनियाद नहीं है हमारे पास। आज देखें आप कैसे इक्तिसाद का निजाम जो हजरत मूसा के, हजरत ईसा के जमाने में यहां तक पहुंचा था, हजरत ईसा मुसले हैं इक्तिसाद के मैदान के। आज तक किसने ये पहलू खोला है? किसने ये पहलू खोला है आज तक कि हजरत मूसा इक्तिसादी निजाम के मुसले का नाम है? हजरत ईसा की मानवियत यूं नहीं है, गौर करें, हजरत ईसा की मानवियत सेकुलर नहीं है कि जिसका इक्तिसाद से कोई ताल्लुक नहीं है। आज आप देख लें जितने हमारे मुआशरे के बाबे हैं, पीर हैं, इस माना में जो बाबे और पीर हैं, क्या ताल्लुक है उनका मुआशरे के अंदर इक्तिसाद से? किसी बाबे और पीर को कभी देखा है किसी बैंक के सामने खड़े होके हजरत ईसा की तरह खड़े होके जो है उसको ललकारता हुआ? किसी को देखा है ऐसा, किसी ऐसे बाबे और पीर को खड़ा और एक मसलन जो है ना एक स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के सामने खड़ा हो जाए और कहे कि जो है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, जाके कहो, कहे कि देखो ये जो तुम यहाँ पे बैठ के करो, जिस इक्तिसादी निजाम को डिजाइन करो, ये अल्लाह के साथ जंग है। देखें कुरान मजीद के अंदर रिबा एक ऐसा मसला है, सूद एक ऐसा मसला है। अल्लाह ताला ने देखें मुख्तलिफ गुनाह हैं, गुनाह ने कबीरा भी हैं, लेकिन कितने गुनाहों के बारे में कुरान के अंदर इस्तेलाह ये इस्तेमाल हुई है कि अल्लाह के साथ जंग है। जाएं तहकीक करें इसके ऊपर कितने के बारे में। अगर कोई बंदा मसलन बेनमाजी है, बावजूद इसके के बेनमाजी है, कुरान में कहीं पे दिखा दें कि इसको अल्लाह के साथ कलमा हर्ब इस्तेमाल किया हो, हर्ब हर्ब कि अल्लाह के साथ जंग है। रोजाना रखने को कहा गया अल्लाह के साथ जंग है, खुम्स न देने को कहा गया अल्लाह के साथ जंग है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो रहनुमाई करें मेरी। जाएं देखें मुख्तलिफ चीजों के, हत्ता जो गुनाह है, गुनाह ने कबीरा है, उनका गुनाह ने कबीरा होना अपनी जगह पर, लेकिन ये एक ऐसा मसला है सूद का कि इसको कुरान ने वाज़ह आयत के अंदर कहा है कि جو سود لیتا ہے یا جو سود دیتا ہے، جو سودی نظام ہے، یہ اللہ کے ساتھ علل اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے، نیچے بھی کسی کا نام نہیں لیا، کہا اللہ کے ساتھ جنگ ہے. آپ مجھے بتائیں آج کتنے حضرت عیسیٰ کے پیروکار، خود مسیحیت کے اندر آپ دیکھ لیں، خود اسلام کے اندر آپ دیکھ لیں. حضرت عیسیٰ ایک اقتصادی مسئلہ ہے، کاش اللہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا نکلے اس پہ جا کے ریسرچ کرے، کام کرے، اور خالی اسی عنوان کو آپ ٹرینڈ بنائیں، ہائی لائٹ کریں. حضرت عیسیٰ اقتصادی مسئلہ کا نام ہے جس کی معنویت اقتصاد سے کٹی ہوئی نہیں ہے. آج ہمیں کون سا ولی چاہیے؟ ایسے ولی چاہیے کہ جو معاشرے کے اندر بنیادی بتوں کو توڑ سکتے ہوں. حضرت عیسیٰ کے زمانے کے اندر یہ جو بینک تھا، میں نے جو عرض کیا ہے، یعنی بینک اس زمانے میں، اس کی دو تین جو تلفظ ہیں مختلف زبانوں کے اندر، بینک ہے، بینچ ہے، یہ کیا تھا؟ آج جو یہ جو بینک آج آپ دیکھتے ہیں، اس پہ اگر آپ نام رکھ لیں اسلامی بینک، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں اسلامی کفر، مومنانہ منافقت، کتنے تمسخر والی بات ہے، آپ کہیں مومنانہ منافقت، اسلامی کفر، مومنانہ کفر، یہ ہو سکتا ہے؟ خوب، آ جا کے کون اس کی اصلاح کرے گا؟ مثلا آپ مجھے بتائیں، ابھی میں موضوع سے تھوڑا سا ہماری بحث کسی اور طرف چل پڑی ہے، میں اس کو سمیٹتا ہوں، اشارتاً عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت کا جو اقتصادی نظام ہے، ابھی کیوں ہماری غیرت مر گئی ہے؟ غور کریں کتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری غیرت مری ہوئی ہے. ہم آرام سے راتوں کو سو رہے ہیں فقط سیلاب کے کلپ دیکھ کر، غور کریں، اور بہت بھی کر دیا تو چار پیسے دے دیے، ٹھیک ہے جی، آپ فلاں تنظیم نے رابطہ کیا تھا، فلاں ادارے نے رابطہ کیا تھا، پیسے دے دیے. ہم اپنی ذمہ داریاں اس حد تک لے آئے ہیں فقط، اگر کچھ کر بھی رہے ہیں متدین، ہمیں کیسے راتوں کو سکون کی نیند آ جاتی ہے؟ ویڈیو کلپ میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنی جگہوں پہ انسانوں کے گھر بالکل ملیاں میٹ ہو گئے ہیں، پانی کی نظر ہو گئے ہیں، ایک آخر الزمان کی نشانیاں اس وقت پاکستان کے اندر دکھ رہی ہیں. یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس طرح کا پانی جو اس طرح سے زمینوں کو، فصلوں کو، گھروں کو، ہر چیز کو تباہ و برباد کرے گا. سارا کچھ دیکھنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ فقط سٹیٹس لگا رہے ہیں، فقط ویڈیو کلپ چیک کر رہے ہیں، فقط جو ہے وہ نیوز کے بلٹن سن رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، کس نے کیا کہا، کون سا ویڈیو کلپ آ گیا، بس شیئر کر رہے ہیں. ادھر گئی یہ غیرت؟ کیسے راتوں کو سکون کی نیند آ جاتی ہے جب ایک امت کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ بےچارے کس قسم کرسی کی حالت کے اندر ہے. اس بے حسی کے اندر ایک بہت بڑی چیز جو انسان کے اندر ایک قومی حمیت کو مار دیتی ہے، قومی غیرت کو مار دیتی ہے، انسانوں کے اندر شرف کو مار دیتی ہے، اس کے اندر اس لقمے کی بھی تاثیر ہے جو ان بینکوں کے ذریعے سے آ رہا ہے. امام حسین نے روز عاشور جب لشکر کو خطاب کیا جو سامنے کھڑا تھا، جو بظاہر دیندار تھے، یہ منتظر تھے کہ کب حسین ابن علی سے جنگ ختم ہو اور جا کے اول وقت میں نماز پڑھی. امام جب ساری باتیں کر چکے اور کہہ رہے ہیں دیکھو میرا لباس کس کا ہے، دیکھو میرے سر پہ امامہ کس کا ہے، یہ میرے اوپر، میرے پاس جو نشانیاں، یہ کس کی نشانیاں ہیں، ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود یہ لشکر پھر بھی حسین ابن علی کے خون کا پیاسا ہے. بڑی وجہ کیا ہے؟ امام نے خود فرمایا ہے، فرمایا کہ تمہارے شکم کے اندر اس وقت مال حرام ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کے ہر سو نسل کے اندر، میں ان کے مال کے اندر، میں ان کے ہر بنیادی ضرورت کے اندر میں نفوذ کروں گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج بینک کا سسٹم کیسا ہے؟ ابھی ہمیں اس پہ کتنے احساس ہیں، کتنے ہمارے پاس اس وقت ڈسکشنز اس کے اوپر ہو رہی ہے، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کتنے اس پہ تھیسز لکھے گئے ہیں، کتنا اس کے اوپر اصلاً بات ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کوئی اتنے اس مقدس سامری کے مقابلے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ بینک کے مقابلے میں ہم نے آج اسلامائزیشن تو کر دی ہے، اسلامی بینک اور دبئی بینک اور پتہ نہیں امارات بینک اور پتہ نہیں یہ بینک اور وہ بینک اور فلاں بینک، ابھی یہ الگ بحث ہے، ابھی میں اس پہ زیادہ وارد نہیں ہوں گا. انشاءاللہ کبھی توفیق ملی تو ہم پورے بینکنگ سسٹم کو ایک خاص پہلو سے کھولیں گے. اور یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام کفر کا ایک تجلی ہے، اس پہ بات ہوگی پوری. کیا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ابھی اس کی جگہ یہاں نہیں ہے اس پہ وضاحت کی. لہٰذا آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ ایک طرف معنویت کی تکمیل کر رہے ہیں اور تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کی اندر جو ہے اس کو انسانوں کے اندر اس کو پروان چڑھانے کا ایک پورا نیٹ ورک ایجاد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اقتصادی جو اصلاح ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو رباخار معاشرہ تھا، جو رباخار یہودی تھے اس وقت کے، جیسے آج ہمارے پاس فیڈرل ریزرو ہے، جیسے ہمارے پاس آج ورلڈ بینک ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے در حقیقت؟ غور کریں ورلڈ بینک کیا ہے اس وقت آپ کی نظر میں، تاریخ کو پڑھتے ہوئے آئیں ذرا، ورلڈ بینک کیا ہے در حقیقت؟ یہ وہی یہود کا شجرہ خبیثہ ہے कि उस वक्त यरूशलेम में वहां पर माबत के बाहर ये वहां पर बेंच लगा के बैठा था, आज पूरी दुनिया का जो है इक्तिसादी निजाम इनके हाथ में और सूद पे चल रहा है सारा कुछ। ये नंगोवार नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इक्तिसाद दिवालिया हो चुका है और इस वक्त गिरवी रखवा दिया गया वर्ल्ड बैंक को। हम में से कितनों को पता है, ये कितने चीख रहे हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान के जो इस वक्त इक्तिसाद है वो गिरवी रखवा दी गई है वर्ल्ड बैंक को। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान का इक्तिसादी निजाम, आप कुछ भी करें जाके, आप कहें मैं तो अपनी कंपनी चला रहा हूं, मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूं, मैं तो फकत जो है अपना फलां काम कर रहा हूं, मैं तो अपना बिजनेस कर रहा हूं, ये आपका जो कुछ जमा हो रहा है ना, जो कुछ तैयार हो रहा है, हम तो क्योंकि कंज्यूमर हैं, हम तो सारिफीन हैं, हम अपनी लोकल सतह पे चीजों को देखते हैं। आए इसको बड़े पैमाने पे देखें, एक मुल्क की इक्तिसादियात में जो सरमाया है, एक मुल्क की इक्तिसादियात में जो सिस्टम अभी जोड़ दिया है बैंकों के साथ, अभी आप देख लें आपकी कौन सी चीज है जो बैंक से वाबस्ता नहीं है, किसी एक का नाम ले, दुश्मन कैसे काम करता है। जब हर चीज आपकी जिंदगी की बैंक से वाबस्ता हो जाती है किसी ना किसी उनवान से, और ये बाद में पूरे मुल्क का जो भी सरमाया है ये जब गिरवी रखवा दिया गया कि इसको वर्ल्ड बैंक को, इसके बाद आपकी क्या हैसियत है। सियासी तो हम खो बैठे, अभी सारा रोना रो रहे हैं सियासी मैदान का, इक्तिसाद पे कौन रोने वाले हैं, इस पे कोई मसाइल पड़ने वाला है, आपके पास कोई नोहे हैं इस मसाइल के ऊपर, नोहे जिसपे मातम करें हम, रब्बी निजाम को आश्कार करने के लिए कोई नोहे किसी ने सुने हैं ऐसे, हाँ कोई मजलिस ऐसी सुनी हो। ये मसाइब भी कभी हमारे स्टेज से मसाइब के जुमले पढ़ते हुए किसी ने कभी बयान किया है कि देखो हुसैन इब्ने अली के सामने बेदीन तरीन इंसान नहीं खड़े हुए, वो खड़े हुए हैं जो हुसैन को शहीद करके अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना चाहते हैं। इनको सब कुछ समझ आ रहा है, इनको अमामे रसूल भी नजर आ रहा है, वो सारी निशानियां जो रसूल अल्लाह की थी उसके कुछ झलक इमाम हुसैन में नजर आ रही है, उसके बावजूद फकत फर्द इमाम हुसैन के नहीं दुश्मन। गौर करें, ये जो मुआशरा सामने आके खड़ा है ये फर्द इमाम हुसैन का फकत दुश्मन नहीं है, ये उस इलाही नक्शे का दुश्मन है। लिहाजा आप देखते हैं कि क्या होता है, इमाम फरमाते तुम्हारे शिकम में गैरत कब मरती है, हमारे अभी देखे मुआशरे में क्यों गैरत मर चुकी है, क्यों इलाही तूफान इलाही जलजले इलाही इस तरह की आफात हम पे आ रही हैं। सारा ना कह दें कि फलां ने पानी छोड़ा तो यूं हो गया, वो कह रहे फलां ने पानी छोड़ा तो यूं हो गया, फलां जगह ये हो गया, मगर इसको आप सैलाब कहेंगे, अभी ये जो आप इस वक्त पाकिस्तान में हालत देख रहे हैं इसको आप सैलाब का नाम देंगे, ये सैलाब है, ये फकत सैलाब है। जब एक कौम पे अजाब नाजिल होना चाह रहा था, फरिश्ते जमीन पे उतरे तो कहा कि खुदाया हमें तो तूने जमीन पे भेजा लेकिन हम यहीं पे देख रहे हैं इतने घरों में इबादत हो रही है, इतने लोग शब जिंदादार हैं, बातें कर रहे हैं। जब वापस गए अल्लाह ताला ने फिर भेजा और अब हुक्म दे के भेजा कि अब इन इबादत गुजारों को भी रगड़ो इसके साथ। इनके होते हुए मुआशरा क्यों तब्दील नहीं हुआ, इनके होते हुए मुआशरे के अंदर अमर बिल मारूफ और नहीं उनकर क्यों नहीं हुआ। आज हम इस पे तो सोच रहे हैं कि हमने ये क्यों करना है, वो कैसे करना है, इज्तिमाई तोबा के लिए कितने तैयार हैं हम, ये वाकई अल्लाह की तरफ से थपेड़ नहीं है एक तरह से। अपने मुआशरे के अंदर इस टाइम सूद और रिबा देख लें, अपने मुआशरे के अंदर फसाद और फाशा देख लें, जिस मानवियत की हजरत इस ईसा की जिंदगी में हम बात कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है इस वक्त कि हमारे इबादतों के मरकजों के अंदर तो इबादत की बातें हो रही हैं, मजलिस के नाम पे, नमाज के नाम पे, खत्मे कुरान के नाम पे, किसी और नाम से, लेकिन जब बाहर निकलते हैं हमारा बाजार इस वक्त किसके हाथ में है, हमारा तालीमी निजाम इस वक्त किनके हाथ में है, हमारे मुआशरे के अरबाब तबका जो है हुक्मरान तबका वो इस वक्त किस रुझान के साथ है, क्या इसके बाद अजाब नहीं आने चाहिए, इस पहलू की तरफ भी हमें मुतवज्जे होने की जरूरत है। लिहाजा आप देखें हजरत ईसा ने यहाँ पर दो अहम काम किए, एक तरफ मानवियत को परवान चढ़ाया, इसके लिए कोरल टीम तैयार की, फिर यही अंसारी जो है अल्लाह ताला के रस्ते में हजरत ईसा के, इन्होंने ही फिर जो है लोगों को तैयार किया और इधर इक्तिसाद की असलाह के लिए भी खड़े हुए। लिहाजा आप देखते हैं कि हजरत ईसा के लिए कौन सी मुश्किलें खड़ी हुई, इसको तारीख में देख सकते हैं। हजरत ईसा के उठाए जाने के बाद हजरत ईसा के हवारियों के साथ क्या हुआ, जाए तारीख उठा के देखें, पढ़ें इसको, मुताला करें, रिसर्च करें, तहकीक करें, इसके ऊपर क्या हुआ, यहूद ने क्या किया, और आप आते जाएं अल्लाह ताला ने यहां पर वो ईसाइयत के जो आज भी किसी हद तक हजरत ईसा की तालीमात पे पैरोकार है, इस हजरत ईसा के इन पैरोकारों का जहूर के साथ एक बड़ा खास ताल्लुक है कि जब हजरत ईसा आएंगे जहूर के टाइम पर और इमाम کی نیابت میں جو ہے نماز ادا کریں گے. اور یہاں حضرت عیسیٰ کا یہ لشکر جو منتظر ہے اور آج ان کی تعلیمات پہ کاربند ہے, ان کے ہمراہ خود کو شامل کریں گے کہاں پر, حضرت امام زمانہ کے لشکر میں, اور اس کے بعد جو عالمی جنگ اور یہ جو بھی ہونا ہے اس کا حصہ بنیں گے. آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ انہی ابتلاعات جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو حضرت عیسیٰ کے انصار تھے, یہ جب مختلف زمینوں سے گزر رہے تھے تو ان کا ایک گزر جو ہے وہ زمین کربلا سے ہوتا ہے, اور یہاں پر پھر ایک ذکر ہوتا ہے, یہ روایت ہے امیر المومنین سے, کہ جب اس زمین سے گزرتے ہیں کربلا کی سرزمین سے تو یہاں پر جو ہے اس کربلا کی اس محیط میں جو کچھ ہونا ہے اگلی نسلوں کے اندر اس سے آگاہ ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ وہاں پر اپنے حواریوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے حواریوں کے سامنے اس سرزمین کے اوپر جو حق کو باطل کی نبرد دونی ہے اس کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں, اور باقاعدہ طور پر جسے کہتے ہیں امام حسین کے مصائب پہ گریہ کرتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کا جو امام حسین کے ساتھ تعلق ہے, حضرت عیسیٰ کا جو اس حق کو باطل کی نبرد کی اہم تجلی اور اس حق کو باطل کی نبرد اور پیکار کا ایک اہم موڑ یعنی واقعہ کربلا, اس کی نسبت یہ آگاہی حضرت عیسیٰ کے انصار کے زمانے میں ان کو بھی دی گئی. اور بعد میں آپ دیکھیں کہ یہی انشاءاللہ انصار ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ہمراہی میں اس عالمی نصرت کا جو لشکر ہے اس کا حصہ بنیں گے, اور حضرت امام زمانہ کے لشکر میں ہمراہی کر کے یہ حق کے قیام کے لیے جو ہے اس نصرت کے عمل کو آگے بڑھائیں گے. یہاں پر میں کتاب آخر میں آپ کو جو ہے یہاں پہ ریفر کروں گا, اس کا مطالعہ کریں. نائل فرگوسن, یہ ظاہراً میرے خیال میں ہارورڈ یونیورسٹی کا یہ پروفیسر ہے, نائل فرگوسن کے نام پہ, نائل فرگوسن, اس کی کتاب ہے دی ایسنٹ آف منی. یہ ایک پوری ڈاکومنٹری ہے. ویسٹ نے جو ایک کام کیا ہے بالخصوص وہاں کے پڑھے لکھوں نے, ہم تو یہاں فقط لیکچر اور درس دیتے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے ویسٹ کے اندر, انہوں نے جو ہے ریسرچ کو کیا کرتے ہیں, ریسرچ کو ڈاکومنٹری کی زبان میں لے کے آتے ہیں, یعنی فقط لیکچر نہیں ہوتا, ڈاکومنٹڈ کرتے ہیں اس کو, ڈاکومنٹری کی زبان میں لے کے آتے ہیں. نائل فرگوسن کی ایک کتاب ہے دی ایسنٹ آف منی, اس کے اندر اس نے پوری جو ہسٹری ہے اکانومی کی اس کو یہود کے عرصے سے بیان کیا مختلف زمانوں میں, پوری ایک ڈاکومنٹری ہے چند قسطوں کے اوپر. میں گزارش کروں گا آپ میں سے وہ افراد کہ جو اس موضوع کو یعنی اقتصاد, عالمی اقتصاد, اس پہ یہود نے جو کچھ کیا ہے اور اب ہم کدھر جا رہے ہیں, اس کو اس نے ڈاکومنٹری میں جو ہے بہرحال یہ لے کے آئے. یہ ایک ڈاکومنٹری ہے, اس کے علاوہ ایک اور ڈاکومنٹری ہے اگر اس وقت کی جو اقتصادی مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر, اس کا نام ہے دی فور ہارس مین کے نام پہ, چار گھڑ سوار. یہ در حقیقت ابھی کا جو علم اقتصاد ہے, علم معاشیات, اس کے چار بنیادی نظریہ دان جو ہیں یعنی جنہوں نے نظریہ دیا ہے ان کے نظریات کی بنیاد پر یہ ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے جو آپ بتا رہی ہے کہ دنیا کا اقتصاد اس وقت کس بحران کا شکار ہے اور کدھر جا رہا ہے. یہ جو میں نے نائل فرگوسن کی کتاب کہ جو کتاب بھی ہے اور ڈاکومنٹری میں بھی ہے دی ایسنٹ آف منی, یہ آپ کو ہسٹری بتائے گی کہ کن ادوار سے یہ بینکنگ سسٹم گزرا ہے, اور یہ جو میں نے آپ کو دوسری ڈاکومنٹری بتائی ہے دی فور ہارس مین, یہ آپ کو جو ہے اس وقت جو اقتصادی عالمی صورتحال ہے اور اس کے اندر جو بحران اس وقت ایجاد ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس بارے میں انشاءاللہ ایک حد تک رہنمائی کرے گی, اور بھی کافی چیزیں ہیں جو سوچی جا سکتی ہیں. آخر میں ایک فہرست وار دو تین چیزیں عرض کروں جس پہ سرچ کی ضرورت ہے. مثلا یہود اور عالمی اقتصادی نظام, یہود اور سیاست, یہود اور ایگریکلچر اور زراعت, یہود اور عالمی میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اور اسی طریقے سے یہود اور ہالی ووڈ, یہود اور فلم انڈسٹری کے اندر جو اس وقت سیلیبریٹیز ہیں, بالخصوص جو ٹاپ پہ اس وقت سیلیبریٹیز ہیں, چاہے وہ ایکٹرز ہیں یا ایکٹریسز ہیں, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کن خاندانوں سے ہیں, یہ ایک پوری الگ بحث ہے کہ آپ دیکھیں کس انداز میں یہ کام بڑے آگاہانہ انداز میں آگے جا رہے ہیں, ہمیں انٹرٹینمنٹ لگتی ہے. ہو یہود اور جو موجودہ سائنسز ہیں ہمارے پاس, اس کے اندر یہود کی کرستانیاں کہاں پہ ہیں, ان سائنسز کو इन साइंसेस का तौहीद के साथ राबता काटने में यहूद ने क्या किया है। मसलन साइकोलॉजी का राबता कहाँ पे इलाहियात के साथ है, मौजूदा फलसफा जो पढ़ाया जाता है इसका राबता कहाँ पर इलाहियात के साथ है, मौजूदा फिजिक्स बायो केमिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है इसका कहाँ पे इलाहियात के साथ राबता है, तौहीद के साथ राबता है या दीन के साथ राबता है। यानी अगर आप बड़ी पैराडाइम में तकसीम करें, यानी एक सुपर डिवीजन अगर हम करें, तो उसमें मसलन आप आ जाएं नेचुरल साइंसेस, टेक्निकल साइंसेस और सोशल साइंसेस। तीनों मैदानों के अंदर यहूद ने क्या किया है, ये एक अलग तहकीकाती मौजू है। यहूद और अदियान इलाही में तहरीफ का अमल जो है इसको यानी मुतालात की जरूरत है। और इसी तरीके से यहूद और जो बशरियत के लिए जो जंगें हैं तारीख के अंदर इसका मुताला किया जा सकता है। और भी इसके जैली कई मौजूदात हैं, मैं फकत चंद एक आपके सामने फहरिस्तवार जिक्र किए हैं कि अगर आप समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त ये मसला कितनी बड़ी सतह का है तो इन चंद पहलुओं पे फकत फहरिस्तवार कुछ चीजें सर्च करें। वो जो डीप मुताला है, डीप रिसर्च है, वो एक अलग चीज है। फहरिस्तवार ही अगर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इस ये अलमिया इस वक्त किस सतह का है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हकीकी मानवियत अपने अंदर ईजाद कर सकें और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो अंबिया पे ईमान कुरान ने जिक्र किया है कि जो इंसान ने ईमान लाने हैं उनमें से एक ईमान अंबिया पे ईमान है और उन अंबिया में से एक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान है कि जो मुसलमान होने के नाते हम पे फर्ज है, हमारे ईमान का तकाजा है। अल्लाह ताला हमें हजरत ईसा की पैरवी करते हुए अपने माशरों के लिए मुसलह का किरदार, बिलखसूस इक्तिसाद के मैदान का मुसलह बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।